धवला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सौवसाहूणम् साहु वज्रायिरिये अरहन्ते वन्दिऊण सिद्धेवी जे पंचलोग वाले वोच्छं बंधस्य सामित्तम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और बुद्धबलिया आचार्य। इस षटखंडागम का जो तृतीय खंड है, इसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। और इस आठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 158 पर हम आ गए, 158। अब यहाँ नई मार्गणा चालू हो जाती, इंद्रिय मार्गणा। अभी तक तो हमने गति मार्गणा में अलग अलग गतियों में बात देखी थी। पढ़ते यहाँ पर 158 पृष्ठ 102 नंबर का सूत्र, इंद्रियाणुवादेण ए इंद्रिया बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता बीइंद्रिय तीइंद्रिय चौरिंद्रिय पज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिंद्रिय अपज्जत्तानम पंचिंद्रिय तिरिक्ख अपज्जत्त भंगो। यहाँ क्या कहते हैं, इंद्रिय मार्गणानुसार एकेंद्रिय बादर सूक्ष्म, यानी बादर एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय, इनके पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के ही, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त, हर एक के पर्याप्त अपर्याप्त, तथा पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों की प्ररूपना। पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहने से उसमें मनुष्य तीर्यंश दोनों आ गए, लब्धि अपर्याप्त। इन सबकी प्ररूपना कैसी है, तो कहते पंचेंद्रिय तीर्यंश अपर्याप्तों के समान है। अभी हमने तीर्यंश गति में सामान्य तीर्यंश पंचेंद्रिय तीर्यंश त्रिक देखे थे, तो उसमें पंचेंद्रिय तीर्यंश लब्धि अपर्याप्त की जो बात देखी थी, वैसे ही यहाँ भंग होगा, क्योंकि ये सारे कैसा है, मिथ्या तो गुणस्थान है। और जो अपर्याप्तों में जो प्रकृति बनती वही यहाँ बंधेगी, पांच ज्ञानावरण है, नौ दर्शनावरण है, पांच अंतरा है, वो ध्रुव बंधी तो सब बंधेगी बंधेगी, क्या नहीं बंधेगी इनको, जिसको वैकृत षटक कहते हैं, और देवायु नरकायु ये नहीं बंधेगी, आहार का हर अंगोपांग नहीं बंधेगा, तीर्थंकर नहीं बंधेगी। हमने वहां देखी थी कितनी बंधिया देखी थी, याद है 109 बंधी ऐसा कुछ देखा था ना,
वहां पे 109 तीन कम कर दी थी हमने,
109 11 कम कर दी थी ना, वैकृत षटक और दो आठ, तो ये हो गई आरोग्य और तीर्थंकर, ये प्रकृतियां नहीं बनती। पेज नंबर 158। अब देखो इंद्रिय मार्गणा की बात चल रही है, एक इंद्रिय से लेकर चतुर इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त सब सारे भेद लेना, और पंचेंद्रियों के अपर्याप्त भेद लेना, तो ये सारी प्ररूपना कैसी है, तो पंचेंद्रिय तीर्यंश अपर्याप्तों के समान है। अब हम पढ़ेंगे आगे, नीचे लिखा देखो, यह अर्पणा सूत्र देशामर्शक है, यानी उसमें थोड़ी बात बताई, उसमें से खोलकर बताएंगे, मिला 158 पेज, चश्मा नहीं लाए, भूल गए, उनको अंदर से देना। तो ये देशामर्शक जो है, क्योंकि बध्यमान प्रकृतियों की संख्या की अपेक्षा, 109 जो संख्या है उसकी अपेक्षा करके अवस्थित है, वहां पर 109 प्रकृतियां बन सकती, यहां पर भी उतनी बन देगी, इसी कारण इससे सूचित अर्थ की प्ररूपना करते हैं वह इस प्रकार है। यहां पहले बध्यमान प्रकृतियों का निर्देश करते, निर्देश यानी कथन करते, पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता वासाता वेदनीय। देखो क्रम कैसे है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय, इस क्रम से वो बात बताएंगे। आयु नाम गोत्र अंतराय। तो पांच ज्ञानावरणीय 158 पेज नीचे से दूसरी लाइन, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व सोलह कषाय, नौ नौ कषाय, तिर्यगायु मनुष्यायु, तिर्यगति मनुष्य गति, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय जाति, औदारिक तेजस कारमान शरीर, छह संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, छह सहनन, वर्णगंध रसस्पर्श, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी, मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, आतप उद्योत, दोनों विहाय गतिया, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यशकीर्ति अयशकीर्ति, निर्माण, नीच व उच्च गोत्र, और पांच अंतराय प्रकृतियां। यहाँ बध्यमान प्रकृतियां, वहां पर भी ऐसा ही बताया था बध्यम बांधने वाली कौन सी थी, उसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखो हम पढ़ने के पहले हम सोचते हैं डिफरेंस कहाँ होगा, जरा जोर से, तिरंज गति शांत और कोई डिफरेंस, वहां पर भी हमने देखा था शांत निरंतर, उसमें भी था कहाँ से आया हुआ जीव उसकी बात की थी, वायु का एक से आने वाले के लिए उसके भी लिए उसको निरंतर बताया था। देखो यहाँ उदय रूप प्रकृतियाँ डिफरेंस होगी, वहाँ पंचेंद्रियों में पंचेंद्रिय जाति का उदय है और यहाँ एक इंद्रिय द्विंद्रिय या तीन इंद्रिय इस तरह से उसका उदय है, तो कौन से सोदय परोदय में डिफरेंस होगा, ख्याल में है ना, किसके उदय में कौन सी बनती उसमें डिफरेंस होगा। जैसे पर्याप्त नाम कर्म वालों को कहेंगे अपर्याप्त का जो बंध है वो तो परोदय में हो रहा है, इस तरह से डिफरेंस होगा। बाकी बंधने वाली प्रकृतियां जो पंचेंद्रिय, मिला पेज नंबर 158 पर आए हम, बंधने वाली प्रकृतियां जो पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त में थी वही यहाँ पर है। अब डिफरेंस जो है बताएंगे, अभी हमें पहले सोचना है ना क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इनके अलग अलग जो जाति वाले हैं जीव उनको अलग अलग का उदय है और उनको बनते तो अन्य भी जातियां। तो जब एक केंद्रीय जीवों के लिए कहेंगे तो द्विंद्रीय तीन्द्रीय चतुरेंद्रीय पंचेंद्रीय जाति परोदय से बनती है ऐसा कहेंगे, ख्याल में आई बात, और एक केंद्रीय जाति स्वोदय से बनती है ऐसा वहां कहेंगे। ऐसे वो स्थावर वगैरह के लिए लगा लेना,
प्रत्यय भी कम हो जाएगा।
अब यहाँ पर दे हाँ प्रत्यय जो कुछ अलग अलग है उसकी बात है, पुरुष वेद का है का
नहीं, कम हो
जाएगा, स्त्री वेद भी कम हो जाएगा,
वही बता रहा है।
हाँ, वो तो पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त में भी कम किया था, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं था। देखो अब यहाँ चार पांच लाइन हो गई तो बीच में ही सेंटर में से शुरू करते, एकेंद्रिय जीव का आश्रय करके इनकी प्ररूपणा करते हैं। अभी एकेंद्रियों की अपेक्षा बात करेंगे, स्त्री वेद पुरुष वेद मनुष्यायु मनुष्य गति द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय जाति, अंतिम संस्थान को छोड़कर पांच संस्थान यानी कुंडक संस्थान बिना अन्य सभी, औदारिक शरीर अंगोपांग उसका भी उनके उदय नहीं है, छह सहनन, मनुष्य गति प्राज्ञानोपूर्वी, दो विहाय गतियां, त्रस सुभग सुस्वर दुस्वर आदे और उच्च गोत्र, इनके उदय का अभाव होने से तथा शेष प्रकृतियों के उदय विच्छेद का अभाव होने से, यहाँ उदय से बंध क्या पूर्व में विच्छिन्न होता है या क्या पश्चात विच्छिन्न होता है यह विचार नहीं है, क्योंकि सत और असत की समानता का विरोध, यानी यहाँ कौन सी प्रकृतियां उदय रूप नहीं है बस वो बात बता रही। उदय में नहीं है हाँ, क्योंकि एकेंद्रीय है तो द्विंद्रीय तीन्द्रीय चतुर्द्रीय पंचेंद्रीय जाति का उदय नहीं है, वो एकेंद्रीय जो तो नपुसक वेदी है, अन्य वेदों का उदय नहीं है, इस तरह से हर एक में लगा लेना। ज्ञान वृद्धि की बात नहीं ली क्या यहाँ पर? उसका उदय है क्या? मैं तो हमेशा कहती थी नहीं है उदय, देख लेते जरा पंचेंद्रिय तीरन चपरी आप तो यहाँ लिखा क्या स्थान वृद्धि के लिए बात?
नीचे था चार दस्ता वर्णीय लिया है, बच्ची को नहीं लिया है। तो तीन जिग्रा भी उदय नहीं होगा ना यहाँ पे,
इनका मेंशन ही नहीं है। तीन तीन निद्राओं की बात ही कहाँ लिखी? पूरा पढ़ते तो मिल जाएगा कहीं। शायद वो एक सूक्ष्म बादल में डिफरेंस होगा, देखते हैं। यहाँ उसकी बात यहाँ नहीं ली उन्होंने, उदय के अभाव में उस उन प्रकृतियों को नहीं गिना है। क्या क्या
तीन निद्रा का पाया यहाँ पे लिख लेना चाहिए ना?
क्या कह रहे हैं जरा जोर से
बोलो।
अभी कुछ नहीं करना अपने से, पहले पढ़ लेते पूरा। आगे देखते पेज नंबर 159 नीचे से दूसरी पैरे दूसरी लाइन। पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुसक वेद, तिर्यक आयु, तिर्यक गति, एकेंद्रीय जाति। अभी ये एकेंद्रीय जीवों के लिए एकेंद्रीय जाति, तेजस्व कारमान शरीर, इन सबका उदय तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ऐसे ये प्रकृतियाँ लिए। वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु, स्थावर स्थिर अस्थिर, जो ध्रुवोदय है ना, शुभ अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अनादेय हुआ उसको अनादेय करो, निर्माण, नीच गोत्र और पांच अंतराय, इनका स्वोदय बंद होता है क्योंकि इनका ध्रुव उदय देखा जाता है। क्योंकि चार दर्शनावरण का उदय तो हमेशा है, निद्रा प्रश्ला का कभी होगा। साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, छह नौ कषाय, तीन वेद बिना लिए ना, आतप उद्योत, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण शरीर, यश कीर्ति और अयश कीर्ति, इनका स्वोदय परोदय बंद होता है क्योंकि एकेंद्रिय इन जनरल बात कर रहे हैं। एकेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे तो अपर्याप्त का परोदय से बंद कहेंगे, यहाँ एकेंद्रिय सामान्य से एकेंद्रिय की बात अपनी हो रही है क्योंकि ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। अध्रुवोदय का अर्थ ऐसा नहीं समझना है कि थोड़े टाइम के लिए उदय होगा और बाद में ऐसा नहीं उसका अर्थ। साता असाता में तो ये लग जाता है कि एक ही बहु में साता का भी और असाता के भी उदय पलट पलट कर आता है, परंतु सोलह कषाय के बारे में तो क्रोध मान माया लोभ उसका उदय पलट कर लेना है। छह नौ कषाय में भी वो पलटता है, पर आतप और उद्योत ये जो है ना, किसी के है किसी के नहीं है, इस तरह से उसको लेना। पर जिस जीव का आतप का उदय है वो तो थ्रू आउट लाइफ टाइम उसका उदय होगा, परंतु उसका उदय वाले भी उसका बंद कर सकते हैं, बिना उदय वाले भी कर सकते हैं, ऐसा उसका अर्थ लेना। पर जो आतप वाला है उसको तो वो स्वोदय में बांधते ऐसा कहेंगे। पृथ्वी काय को आतप वालों की अगर बात करेंगे तो यहाँ एकेंद्रीय जीव नाना जीवों की अपेक्षा एट ए टाइम बात हो रही है, कोई आतप वाले है कोई नहीं है तो अपने उदय में भी बांधते हैं, पर कि उदय नहीं है तो भी बांधते। उद्योत का भी ऐसे समझना, पर एक भव में उसका उदय पलटता है ऐसा उसका अर्थ नहीं है। जो बादर है वो बादर है, जो सूक्ष्म है वो उस लाइफ टाइम तक उसका वो वही चलेगा, पर्याप्त अपर्याप्त वगैरह। यश कीर्ति अयश में स्वोदय परोदय दोनों का बंद होता है क्योंकि एकेंद्रीय कहने से एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों के यश कीर्ति का भी उदय पाया जाता है। अब औदारिक शरीर कुंड संस्थान संस्थात हुआ है और उपघात का भी स्वोदय परोदय बंद होता है। आप कहेंगे उनको तो इसका उदय होता है, अपन कब होता है? विग्रह गति में नहीं होता। तो जब विग्रह गति में उदय नहीं है और ये प्रकृतियां बंद रही है तब हम कहेंगे परोदय से बनती है। ख्याल में आई ना परोदय क्यों कहा? क्योंकि विग्रह गति में इनके उदय का अभाव होने पर भी बंध पाया जाता है। तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी का भी स्वोदय परोदय बंद होता है, क्योंकि इसका मात्र विग्रह गति में उदय है, वहाँ भी बनती है और बाद में इसका उदय नहीं है पूरे लाइफ में तो भी बनती रहती है। क्योंकि जिन जीवों ने शरीर ग्रहण कर लिया है उनके तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी के उदय का अभाव होने पर भी बंध देखा जाता है, क्योंकि गति हर समय बनती है तो गत्यानुपूर्वी भी उसके साथ बनती रहती है। परघात और उच्छ्वास का भी स्वोदय परोदय बंद होता है, क्योंकि अपर्याप्त काल में उदय के अभाव के होने पर भी उनका बंध देखा जाता है। शेष प्रकृतियों का परोदय बंद होता है, क्योंकि यहाँ उनके उदय का सर्वदा अभाव है। जैसे विहाय गति एक इंद्रिय जीव बांधेगा कि नहीं बांधेगा? स्वर नाम कर्म बांध की बात चल रही है, उदय की नहीं, बांधेगा तो उसको क्या कहेंगे? परोदय से। इसके उदय नहीं और बांध रहा है, उदय है शुंडक संस्थान का और बांध रहा है वज्र ऋषभ नाराज भी बांध सकता है, अन्य पांचों का बंध करेगा तो उनका बंध कैसा होगा? परोदय से। इनके जैसे अन्य वेद है पुरुष वेद स्त्री वेद परोदय से बंध रहे, जिनका इनका उदय नहीं है और फिर भी जो बांध रहे हैं वो सारे परोदय से। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 160 नीचे का पैराग्राफ। पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, तिर्यगायु मनुष्यायु, औदारिक तेजस्व कार्मण शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात निर्माण और पांच अंतराय। इनका निरंतर बंध होता है, क्योंकि एक समय से इनके बंध विश्राम का अभाव है। ये सब ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं ना सब, और इनके लिए औदारिक का भी ध्रुवबंध है, क्योंकि मनुष्य गति और तिर्य गति ही बांधते हैं तो उसके दोनों के साथ औदारिक शरीर का तो बंध होगा, परंतु एक इंद्रिय जाति के साथ अंगोपांग नहीं बंधेगा, अन्य के साथ बंधेगा, इसलिए उसको नहीं लिया। साता व असाता वेदनिया, सात नौ कषाय, मनुष्य गति, सात नौ कषाय ने भय जुगुप्सा को छोड़कर, मनुष्य गति, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, छह सहनन, मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, आतप उद्योत, दो विहाय गतियां, त्रस स्थावर, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति और उच्च गोत्र। इनका सांतर बंध होता है, क्योंकि एक समय से इनके बंध विश्राम देखा जाता है। देखो तीर्य गति को नहीं लिया यहाँ पर, हाँ देखो इनका सांतर बंध, क्योंकि एक समय से इनका बंध विश्राम देखा जाता है। तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र, इनका सांतर निरंतर बंध होता है, क्योंकि सर्व एक इंद्रियों में सांतर बंध वाली इन प्रकृतियों का तेजस का एक और वायु का एक जीव में निरंतर बंध पाया जाता है। जो तेजस का एक और वायु का एक जीव है वो मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी उच्च गोत्र को बांध ही नहीं सकते। जितने काल तक उस पर्याय में है, अधिक से अधिक कितने काल तक रहते तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक, तो तिर्यंच गति का ही बंध करेंगे। हाँ उसमें एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जाति बांध सकते, पर तिर्यंच गति छोड़कर अन्य गति उनके नहीं बंध, इसलिए निरंतर भी कहा। हाँ वहाँ नियम से तिर्यंच में ही जन्मेंगे, पंचेंद्रिय हो सकते, और वहां से जहां जन्म लिया है हमने कल पढ़ा था अंतर्मूर्त तक तो तिर्यंच गति का ही बंध करेंगे, बाद में फिर मनुष्य गति का करेंगे। देखो परघात उच्छ्वास बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर प्रकृतियों का बंध शांत निरंतर होता है, क्योंकि ऊपर वो सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण को लिया है, परंतु इन प्रकृतियों को छोड़ दिया था। तो ऐसा क्यों कहते हैं, उसका उत्तर भी बताएंगे। जैसे हमने देखा ना, तो तेजस का एक वायु का एक में से जहाँ उत्पन्न होता है तो अंतर्मूर्तक तिर्यंज गति बांधता है, इस तरह से ये शंका पूछ रहे इनका निरंतर बंध कैसे होता है। समाधान, क्योंकि एकेंद्रियों में उत्पन्न हुए देवों के अंतर्मूर्त काल तक इनका निरंतर बंध देखा जाता है, क्योंकि देव अगर एकेंद्रीय जाति बांधते हैं तो वो पर्याप्त की ही बांधेंगे, बादर पर्याप्तों में ही उत्पन्न हो गए, तो बादर पर्याप्त के साथ परघात और उच्छ्वास बांध ही रहे थे, तो मरण के अंतर्मूर्त पहले वही बांधते थे और उसके साथ एकेंद्रीय में उत्पन्न हुए तो वही प्रकृतियां बांधेंगे यहाँ पर भी, इसलिए उसको निरंतर कह दिया। आगे देखते हैं, एकेंद्रियों में मिथ्यात्व और संयम कषाय और योग के भेद से चार मूल प्रत्यय होते हैं। उत्तर प्रत्ययों में पांच मिथ्यात्व प्रत्यय, क्योंकि पांच मिथ्यात्वों के साथ एकेंद्रियों में उत्पन्न हुए नाना मनुष्यों के पांच मिथ्यात्व प्रत्यय पाए जाते। क्या कहा, एकेंद्रियों में एकांत मिथ्यात्व वगैरह है कि नहीं है, तो कहते हैं कि वो मनुष्यों में थे और वो मनुष्य वहाँ उत्पन्न हुए हैं, तो ये एकांत मिथ्यात्व तो मनुष्यों के लिए, अन्य जीवों की तिर्यंजों की देवों की बात नहीं की, ख्याल में आई बात। यानी एकेंद्रियों में पांच मिथ्यात्व तो बताए ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मनुष्यों में थे वो मिथ्यात्व तो उसके साथ वहाँ पैदा हुआ है। फिर से पढ़ते देखो, उत्तर प्रत्ययों में पांच मिथ्यात्व प्रत्यय, क्योंकि पांच मिथ्यात्वों के साथ एकेंद्रियों में उत्पन्न हुए नाना मनुष्यों के पांच मिथ्यात्व प्रत्यय पाए जाते हैं। क्या वैसे तो मिथ्यात्व पांचों प्रकार का ही है ना, यही बात बताए ना, यानी वो तो यानी इनके बिना कैसे होते ऐसा पूछते हैं अब।
नित्य निगोद में चार हो गए, नित्य निगोद में मिथ्यात्व से किस प्रकार होते,
वो विनय वगैरह ऐसे वाला नहीं होगा, वो तो गृहित अगृहित में भी उस तरह से लेते हैं, अज्ञान वाला होगा, कैसे कैसे लेंगे,
संशय भी हो सकता है कि संशय भी नहीं,
सब हो गए तो सभी, परंतु वो पांच भेदों में उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। जो क्या होते उसकी तो बात नहीं लिखी ने अन्य से, देखो एक एकेंद्रिय असंयम छह, प्राणी असंयम कौमा लगा नहीं तो सोलह हो जाएगा, नहीं एक एकेंद्रिय असंयम और छह प्राणी असंयम, कौमा कौमा लगा लो, टोटल हमने कैसे देखते हैं, पांच इंद्रिय और छठा मन, हम अविरति बारह प्रकार की यानी बारह प्रकार का संयम गिनते अन्य लोगों में अन्य जीवों में, तो क्योंकि उनके तो जितने हो गए कितने एक ही इंद्रिय है ना, तो एक ही इंद्रिय का संयम होगा, जो जो इंद्रिय है उसी का संयम कहेंगे, जो है ही नहीं तो उसके लिए क्या कहेंगे हम, आपके लिए कि पांच इंद्रिय और मन है तो उस संबंधी असंयम होगा, उनके लिए एक असंयम, कौन सा इंद्रिय में इंद्रिय असंयम में से एक और प्राणी असंयम में से छो, यानी अलग अलग काय वाले, यानी टोटल सात हो गए, हम टोटल बारह गिनते थे तो पांच मिथ्यात्व सात अविरति हो गए। अब सोलह कषाय, स्त्री और पुरुष वेद के बिना सात नौ कषाय, यानी कषाय हम पच्चीस गिनते थे उसके बदले तेईस गिनने पड़ेंगे, उत्तर प्रत्यय गिन रहे हम, स्त्रीवेद नपुसक का विदय का उदय नहीं है यहाँ पर वेदों का, तथा दो औदारिक व कार्मण्य तीन योग योग में कौन से है, औदारिक औदारिक मिश्र और कारमाण, इतने है उनके लिए। ये सभी 38 उत्तर प्रत्यय केंद्रियों में होते हैं। देखो, 5 मिथ्यात्व, 7 असंयम, 23 कषाय और 3 योग, 38 हो गए टोटल। विशेषता केवल यह है कि तिर्यगायु मनुष्यायु के कार्मण प्रत्यय के बिना 37 प्रत्यय होते। जब आयु बनती है तो कार्मण का योग में विग्रह गति में किसी को आयु नहीं बंधेगी, परंतु लब्धि अपर्याप्तों को तो, क्योंकि यहाँ एक इंद्रिय की जनरल बात चल रही है, तो मिश्र का योग में भी उनकी आयु बंधेगी। जो पर्याप्त जीवों की अगर बात स्पेसिफिकली चल रही होगी तो कहेंगे उनका औदारिक मिश्र में भी आयु का बंधन नहीं होगा, परंतु यहाँ एक इंद्रिय इतनी बात चल रही है अपनी। अब 11 व 18 एक समय संबंधी जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्यय होते। देखो, हम जब 10 प्रत्यय गिनते थे तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला गिनते थे, वो तो एक इंद्रियो में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ तो कितने, कम से कम
11,
वो 11 हो जाएंगे। एक मिथ्यात्व, वो क्या मैक्सिमम जो गिनते थे वही, हाँ एक इंद्रिय के साथ 6 लेना, जितने हैं वो टोटल सब ले लेना इनके। हाँ, अभी आते हैं 162 पेज पर। तिर्यक आयु, तिर्यक गति, एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी, कमा देना, आतप उद्योत, स्थावर सूक्ष्म और साधारण शरीर को तिर्यक गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि ये तो तिर्यंज गति के साथ बंधने वाली प्रकृतियां हैं। मनुष्यायु, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र को मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं। शेष सब प्रकृतियों को तिर्यक गति व मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि दोनों गतियों के साथ उनके बंध का कोई विरोध नहीं है। सहनन है, बाकी संस्थान है, अन्य नीच गोत्र भी दोनों गतियों के साथ बन सकता है, ये सब ऐसा ले लेना। एक केंद्रीय जीव स्वामी है, बंध अध्वान सुगम है, बंध विच्छेद है नहीं। 5 ज्ञानावर्णीय, 9 दर्शनावर्णीय, मिथ्यात्व 16 कषाय, भय जुगुप्सा, तेजस्व कारमान शरीर, वर्णादि 4, अगुरु लघु, लघु शब्द रह गया, उपघात, निर्माण और 5 अंतराय, इनका चारों प्रकार का बंध होता है। ये ध्रुवबंधी है ना, तो सादि अनादि ध्रुव ध्रुव सब। शेष प्रकृतियों का सादि व अध्रुव बंध होता है। इसी प्रकार बादर एकेंद्रिय जीवों की भी प्ररूपणा है। विशेष इतना है कि इनके बादर नाम कर्म स्वोदय से बनता है, क्योंकि अभी बादर शब्द लगाए ना, तो इनको बादर का उदय है, तो बादर प्रकृति बादर के उदय में बनती है, तो उसको स्वोदय से बनती है कहेंगे। सूक्ष्म प्रकृति का बंध परोदय से होता है। बादर जीवों के लिए सूक्ष्म का बंध होता है, उसको कहेंगे परोदय से बनती है। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों की प्ररूपणा बादर एकेंद्रियों के समान है। अभी वो पर्याप्तों की बात कर रहे हैं। विशेष केवल इतनी है कि उनके पर्याप्त प्रकृति का स्वोदय और अपर्याप्त प्रकृति का परोदय बंध होता है। यानी जो भेद देखते हैं हम, वैसी प्रकृति बन रही है तो स्वोदय कहेंगे, अन्य प्रकृतियां परोदय से कहेंगे। बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों की भी प्ररूपणा बादर एकेंद्रियों के समान है। विशेष है कि स्त्यान वृद्धि त्रय, परघात उच्छ्वास, आतप उद्योत, पर्याप्त और यशस कीर्ति का उनके परोदय बंध होते हैं। देखो यहाँ स्त्यान वृद्धि आ गई, इसका अर्थ अपर्याप्त में उसका उदय नहीं है, पर्याप्त में है। मैं तो हमेशा एक इंद्रियों में नहीं ऐसा गिनती थी। पहले हमने
नहीं अपर्याप्त में देखा था,
लब्धि अपर्याप्त में नहीं होता है, और एक इंद्रिय आदि में अपर्याप्त में नहीं होता है। पेज 162। मुझे ऐसा लगता था कि एक इंद्रियों में होता ही नहीं है, अपर्याप्तों की बात है, एक इंद्रिय अपर्याप्त में नहीं होता है। हाँ हाँ वो तो है ना। अब पेज नंबर 162, अपर्याप्त लास्ट टाइम, और अयशकीर्ति का सोदय बंद होता है, क्योंकि अपर्याप्त जीव है ना, तो अपर्याप्त बांधते हैं तो सोदय से हो रहा है, और उनके अयशकीर्ति का ही उदय है। पर्याप्त जीवों के दोनों हो सकते हैं, यश या अयश। परघात उच्छ्वास, वो उच्छ्वास है, उच्छ्वास पेज नंबर 163। बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर, इनका एक इंद्रियों में सांतर निरंतर बंध होता है, परंतु यहाँ यानी अपर्याप्तों में उनका सांतर ही बंध होता है, क्योंकि हमने देखा था देव में से एक इंद्रियों में आने वाले के परघात उच्छ्वास बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर बनती रहती है, हमने देखा था ना। देखो
यहाँ पे सांतर बंद होता है क्योंकि ये अपर्याप्त की बात
है। वहाँ ये पूछा था पेज नंबर 161 पर, बीच में शंका लिखी है ना उसके ऊपर की लाइन, परघात उच्छ्वास बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर सांतर निरंतर होता है, फिर वो निरंतर क्यों होता है, तो देव में से वहाँ आए हुए जीवन के लिए वो बात है, क्योंकि देव है वो पर्याप्तों में उत्पन्न हो जाएंगे। अब इसलिए यहाँ कहते हैं उनका सांतर ही बंद है, क्योंकि अपर्याप्तों में कोई देव में से नहीं आ रहा है। यहाँ प्रत्ययों में औदारिक कायोग प्रत्यय नहीं है, जो लब्धि अपर्याप्त जीव है उनके औदारिक कायोग नहीं होगा, कारमान और औदारिक मिश्र दो ही हो गए, इसलिए प्रत्ययों में वो भी कम कर देना। सूक्ष्म एकेंद्रियों की प्ररूपणा एकेंद्रियों के समान है, विशेषता यह है कि परघात उच्छ्वास बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर का उनके सांतर बंध होता है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रियों में देवों की उत्पत्ति का अभाव है, देवों में से आए हुए ही वही प्रकृति बांधेगी अंतर्मूल तक। बादर आतप उद्योत, देखो ये सूक्ष्म जीवों को इनका उदय नहीं है ना, कौन से बादर आतप उद्योत और यश कीर्ति का परोदय बंद होता है, क्योंकि इन प्रकृतियों का इनके उदय नहीं है सूक्ष्म जीवों को। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तों की प्ररूपणा, ये बीच में ब्रैकेट जैसा है वो निकाल देना, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों के समान है, विशेष इतना है कि उनके पर्याप्त प्रकृति का स्वोदय और अपर्याप्त प्रकृति का परोदय बंद होता है, क्योंकि जो पर्याप्त जीव है उनके लिए पर्याप्त स्वोदय में बनती है, अपर्याप्त परोदय में बनती है। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तों की प्ररूपणा, ये भी ब्रैकेट निकालना, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों के समान है, विशेष इतना है कि देखो स्त्यान वृद्धि त्रय लिया, अपर्याप्त है ना, परघात उच्छ्वास और पर्याप्त प्रकृतियों का परोदय बंद होता है। नहीं, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तों की प्ररूपणा सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों के समान है, विशेष इतना है कि, यानी सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तों की ही बात है ये, ये सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तों में क्या डिफरेंस है, तो स्त्यान वृद्धि त्रय परघात उच्छ्वास और पर्याप्त प्रकृतियों का परोदय बंद होता है, और अपर्याप्त नाम कर्म का सोदय बंद होता है, यानी अपर्याप्तों की बात चल रही है, यानी एकेंद्रिय अपर्याप्त में या सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त में स्त्यान वृद्धि का उदय नहीं है। हाँ सभी अपर्याप्त लेना, हमने देखा नारकियों में नहीं होता है, देवों में नहीं होता है, और ये एकेंद्रियों के अपर्याप्तों में नहीं होता है, पंचेंद्रिय भी हमने देखा था तिर्यंच अपर्याप्तों में उसका उदय नहीं था, यानी पर्याप्त जीवों में उदय होगा, ये उसका अर्थ निकलता है। प्रत्ययों में ये सूक्ष्म एकेंद्रिय की बात है ना अपर्याप्तों की, औदारिक कायोग प्रत्यय को कम करना चाहिए, जैसे हमने बाद्र एकेंद्रीय पर्याप्त में देखा था। ये समझ में आई प्ररूपणा? अब द्विंद्रिय जीवों की प्ररूपणा करते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, अब जिनका इनके उदय नहीं है उसकी बात करेंगे। मनुष्यायु, मनुष्य गति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय निकाल दो यहां से, क्योंकि द्विंद्रियों की प्ररूपणा है ना, द्विंद्रियों को द्विंद्रिय का उदय है। देखो ऊपर प्राकृत में देखो, नीचे का पैराग्राफ पहली लाइन है ना, इति पुरुष वेद मनुषाओ मनुष्य गई ए इंद्रिय तीन्द्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय, इसलिए हमने यहां से द्विंद्रिय शब्द निकाल दिया। फिर पढ़ते नीचे से चौथी लाइन, एकेंद्रिय फिर तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जाति, अंतिम संस्थान को छोड़ शेष पांच संस्थान, यानी इनके हुंडक संस्थान का ही उदय है, इसलिए अन्य पांच का उदय नहीं है। अंतिम सहनन को छोड़कर शेष पांच सहनन, एकेंद्रियों में तो एक भी सहनन नहीं था, यहाँ असंप्राप्त सुपाटी का सहनन का उदय रहता है द्विंद्रियों में। मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी आतप, क्योंकि वो बादर पृथ्वी का एक में पर्याप्त में उसका उदय है, ये द्विंद्रिय की उदय प्ररूपना चल रही है। प्रशस्त विहाय गति, यानी ये सब द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रियों के अप्रशस्त विहाय गति का ही उदय होगा। स्थावर, सूक्ष्म, साधारण शरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्च गोत्र, इनके उदय का अभाव होने से तथा शेष प्रकृतियों के उदय विच्छेद का अभाव होने से, क्योंकि एकमात्र पहला गुणस्थान है, उदय विच्छेद की कोई सवाल नहीं है। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तों के द्वारा बध्यमान प्रकृतियों को बांधने वाले द्विंद्रिय जीवों में बंध से उदय क्या पूर्व में या क्या पश्चात विच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है। देखो पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तों के द्वारा बध्यमान, यानी जो 109 प्रकृति हमने देखी, अभी अभी भी देखी थी और कल भी देखी थी, यानी वो देवगति देवगति उस संबंधी प्रकृतियां नहीं बनती आहार अधिक तीर्थंकर, उसके बिना 109 बन सकती है। नया पैराग्राफ 164 पेज, पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुसक वेद, तिर्यक आयु, तिर्यक गति, द्विंद्रिय जाति, तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु, त्रस बादर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग अनादेय, निर्माण, नीच गोत्र और पांच अंतराय, इनका स्वोदय बंद होता है क्योंकि यहां इनका ध्रुव उदय देखा जाता है। देखो यहां तेजस कारमान शरीर लिया पर औदारिक शरीर नहीं लिया, क्योंकि विग्रह गति में उसका उदय नहीं है, इसलिए वो बाद में बताएंगे। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, साता व असाता वेदनीय, 16 कषाय, 6-9 कषाय, पर्याप्त अपर्याप्त, यश कीर्ति और अयश कीर्ति, इनका स्वोदय परोदय से बंद होता है। स्त्यान वृद्धि का उदय है अभी यहाँ पर सब जगह, क्योंकि दोनों प्रकार से भी इनके बंध का विरोध नहीं है। औदारिक शरीर हुंड संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, उपघात और प्रत्येक शरीर, इनका भी स्वोदय परोदय बंध होता है, क्योंकि विग्रह गति में उदय का अभाव होने पर भी इनका बंध पाया जाता है, इसलिए परोदय का, बिना उदय के भी बनती है। तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी का भी स्वोदय परोदय बंध होता है, इसका उल्टा है, विग्रह गति में ही उदय है, क्योंकि विग्रह गति को छोड़कर अन्य अवस्था में उसके उदय का अभाव होने पर भी बंध देखा जाता है। परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त व्याह गति और दुस्वर का भी स्वोदय परोदय बंद होता है, क्योंकि अपर्याप्त काल में इनके उदय अभाव उदयाभाव करो उदय भाव नहीं उदयाभाव फिर भी बंद देखा जाता है। या किया ना उदयाभाव उदय का अभाव तथा उद्योत का उद्योत के उदय से रहित और उससे सहित जीवों में उसका बंध पाया जाता है। मैंने वो स्वोदय से भी और परोदय से भी बंधेगी। स्त्री वेद पुरुष वेद मनुष्यायु मनुष्य गति एकेंद्रिय तीन्द्रिय द्विंद्रिय को छोड़ दिया चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय जाति अंतिम संस्थान को छोड़कर पांच संस्थान हुंडक बिना अन्य पांच सहनन वो भी असंप्राप्त सुपाटिका छोड़कर पांच सहनन मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी आतप प्रशस्त विहार गति स्थावर सूक्ष्म साधारण शरीर सुभग सुस्वर आदय और उच्च गोत्र इनका परोदय बंद होता है, क्योंकि इतनी प्रकृतियां इनके उदय रूप कभी नहीं रहेगी। द्विंद्रियों की बात चल रही है परंतु बनती तो है तो परोदय से बंधेगी। पांच ज्ञानावरणीय नौ दर्शनावरणीय मिथ्यात्व सोलह कषाय भय जुगुप्सा तिर्यगायु मनुष्यायु औदारिक तेजस्व कारमान शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु उपघात निर्माण और पांच अंतराय इनका निरंतर बंध होता है, क्योंकि एक समय से इनके बंध विश्राम का अभाव है। दो आयुओं का निरंतर बंध होता है, क्योंकि एक समय से उनके बंध विच्छेद का अभाव है। एक समय में बंध कर नहीं रुक सकती इसलिए उसको निरंतर कहेंगे। सातावा असाता वेदनिया सात नौ कषाय मनुष्य गति एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय जाति छह संस्थान औदारिक शरीर अंगोपांग छह सहनन मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी परघात उच्छ्वास आतप उद्योत दो विहार गतियां त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त प्रत्येक व साधारण शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय यश कीर्ति अयश कीर्ति और उच्च गोत्र इनका सांतर बंध होता है, क्योंकि एक समय से इनका बंध विश्राम देखा जाता है। अब शंका फिर शंकाकार पूछते हैं, जैसे पहले बताया ना देव में से एक इंद्रिय में आने वाले की बात की थी उनके लिए निरंतर भी बताया था। अब शंकाकार पूछते हैं परघात उच्छ्वास बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर का एकेंद्रिय जीवों के समान सांतर निरंतर बंध द्विंद्रिय जीवों में क्यों नहीं कहा गया? उसका समाधान, एकेंद्रियों के समान विकलेंद्रियों में देवों की उत्पत्ति न होने से यह उक्त प्रकृतियों का सांतर निरंतर बंध नहीं कहा गया। तो मात्र देव में से आने वाले की अपेक्षा बात बताई थी। 166 पेज पर आते हैं। तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी और निज गोत्र का सांतर निरंतर बंध होता है। अब शंकाकार को ये शंका आती है, अरे निरंतर कैसे कहा? तो कहते निरंतर बंध कैसे होता है? उसका समाधान, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि तेजस्कायिक और वायुकायिक जीवों में से द्विंद्रियों में उत्पन्न हुए जीवों के अंतर्मूर्त काल तक इनका निरंतर बंध पाया जाता है। इनके मूल प्रत्यय चार होते हैं, पांच मिथ्यात्व, देखो पांच लिए ना पांच सभी में ले लिए, दो इंद्रिय असंयम क्योंकि इनके दो इंद्रिया है इसलिए दो इंद्रिय असंयम लिए, छह प्राणी असंयम, ख्याल में आती ना बारह असंयम में से हमें पांच और मन और इंद्रिया पांच इंद्रिया और मन है इसलिए उनके छह इंद्रिय असंयम कहते हैं। यह उनके दो ही इंद्रिया है उस संबंधी उनका असंयम है और छह प्राणी असंयम सोलह कषाय सात नौ कषाय जैसे वहां पर भी स्त्रीवेद पुरुषवेद नहीं लिया था, यहां पर भी वही लेना। और चार योग, ये चार योग में कौन सा बढ़ा ब्रह्मा आप बताना। वहां तो औदारिक औदारिक मिश्र और कारमांड लिया था, यहां कौन सा एक योग बढ़ गया? द्विंद्रिय जीव है। हाँ हाँ वचन योग, वचन योग में कौन सा लेना? हाँ अश्विन भाई, चार में से अनुभव लेना। यहाँ लिखा ना चार योग, ये सब द्विंद्रिय जीव के 40 उत्तर प्रत्यय होते हैं। एक इंद्रिय संयम बढ़ा और एक योग बढ़ा, वहां हमने 38 देखे थे एक केंद्रीय में, है ना?
दो पढ़ गए।
ये अनुभव वचन योग, ये चार योग। विशेषता केवल इतनी है कि तिर्यगायु मनुष्यायु कार्मण प्रत्यय के बिना 39 प्रत्यय होते हैं। मनुष्यायु के चाहिए ना, केवल इतने के तिर्यगायु और मनुष्यायु के चाहिए। हाँ 11 और 18 क्रम से एक समय संबंधी जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्यय होते हैं, जैसे हमने एक इंद्रिय में देखे थे वैसे ही। ये विसंजना वाला वहां नहीं होगा, इसलिए वो 10 प्रत्यय नहीं होते। आगे नीचे का पैराग्राफ, तिर्यक आयु तिर्यक गति एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी आतप उद्योत स्थावर सूक्ष्म और साधारण, इनका तिर्यक गति से संयुक्त बंध होता है, क्योंकि तिर्यक गति के साथ बनने वाली ये प्रकृतियां हैं।
क्वेश्चन था, प्रतिपक्ष की अपेक्षा भी अंतर्भूत अंतर्भूत तक पलटता है
क्या क्या
योग? अरे ये जो तिर्यक गति तिर्यक गत्यानुपूर्वी उसका प्रतिपक्ष की अपेक्षा भी उसका बंध हो सकता है अंतर्भूत तक, तो जो ये जो वायुकायिक और अग्निकायिक में से आता है उसका अंतर्भूत बहुत बड़ा होगा।
अरे अरे
नहीं, प्रतिपक्ष की अपेक्षा अंतर्भूत अंतर्भूत में भी पलट सकता है ना।
कौन से तिर्यक गति के लिए? उनके लिए प्रतिपक्ष है ही नहीं है।
नहीं मनुष्य गति है ना,
वायुकायिकों के लिए
नहीं, नहीं द्विंद्रिय में।
हाँ द्विंद्रिय में, तो
द्विंद्रिय में
आप कौन सा प्रश्न की वह बात कर रहे हैं?
ये तिर्यक गति तिर्यक गति प्रायोगेन पूर्वी का निरंतर बंध हम अंतर्मुख काल तक देखते हैं।
हाँ, किसके लिए बताया?
जो वायुकायिक और अग्निकायिक में से द्विंद्रिय में आता है,
हाँ,
उसका अंतर्मुख तक बंध होता है।
बराबर,
और प्रतिपक्ष की अपेक्षा
प्रतिपक्ष वहाँ अंतर्मुख तक बंधेगा ही नहीं, अंतर्मुख के बाद अन्यत्र प्रतिपक्ष एक समय में हो सकता है।
नहीं एक समय में होगा, पर अंतर्मुख तक भी बंद हो सकता है ना।
हो सकता है उसके ना कहे, एक में रुक सकता है कि नहीं रुक सकता, उसको सांतर कहते हैं। अंतर्मूर्त में पलटेगा तो भी सांतर कहेंगे ही कहेंगे, परंतु वो एक समय में रुक ही नहीं सकता वो बंदर, इसलिए निरंतर का। आयु भी अंतर्मूर्त तक तो बनती है, उसको निरंतर कहते हैं कि नहीं कहते? एक समय में जो रुक नहीं सकता है उसको निरंतर कहेंगे। अंतर्मूर्त तक बनती है इसलिए निरंतर को, ये बात नहीं है।
नहीं मेरे को ऐसे लगा कि वायु का ही अग्नि का ही पहचाते उनका अंतर्मूर्त बड़ा होगा और ये अंतर्मूर्त छोटा होगा।
नहीं नहीं नहीं, अंतर्मूर्त तक बनना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक समय में भी चेंज हो सकता है, उसको सांतर कहा। अन्यथा तो अंतर्मूर्त पर बनता ही रहता है, उसमें कोई नवाई नहीं है। पर एक समय में रुक नहीं सकता है इसलिए उसको निरंतर कहा। हम अभी नीचे आए हैं, नीचे के पैराग्राफ में वो जो तिर्यक गति के साथ ही बंधने वाली प्रकृति हमने पढ़ी। अब तीसरी लाइन, मनुष्यायु मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी और उच्च गोत्र का मनुष्य गति से संयुक्त बंध होता है। तिर्यक गति के साथ ये प्रकृतियां नहीं बनती है, तो मनुष्य गति के साथ बंधेगी। शेष प्रकृतियों का तिर्यक गति और मनुष्य गति से संयुक्त बंध होता है, क्योंकि दोनों गतियों के साथ उनके बंध का विरोध नहीं है। ये सब संस्थान है, सहनन है, अंगोपांग है, वो सब उसका दोनों गतियों के साथ बंधेगे। बंध अध्वान सुगम है, बंध विच्छेद नहीं है, एक ही गुणस्थान है। ध्रुव प्रकृतियों का चारों प्रकार का बंध है, सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव। शेष प्रकृतियों का सादी व अध्रुव बंध होता है। इसी प्रकार द्विंद्रिय पर्याप्त जीवों की प्ररूपना है। विशेषता केवल इतनी है कि उनके पर्याप्त नाम कर्म का स्वोदय और अपर्याप्त नाम कर्म का परोदय बंध होता है। इसी प्रकार द्विंद्रिय अपर्याप्तों का भी कथन करना चाहिए। विशेष है कि देखो, स्त्यान वृद्धि की बात आई, स्त्यान वृद्धि त्रय परघात उच्छ्वास उद्योत अप्रशस्त विहाय गति पर्याप्त दुस्वर और यश कीर्ति का परोदय बंध होता है। क्योंकि अपर्याप्तों के परघात उच्छ्वास उद्योत अप्रशस्त विहाय गति का उदय ही नहीं है, पर्याप्त का भी नहीं है, स्वर का भी नहीं है, यश कीर्ति का भी उनके उदय नहीं है। अपर्याप्त और अयश कीर्ति का स्वोदय बंध होता है। अपर्याप्तों के 38 प्रत्यय होते हैं, क्योंकि औदारिक काय योग और असत्यम रुषायणी अनुभय वचन योग का उनके अभाव है, लेकिन्द्रिय के समान उनके हो जाते हैं। यानी सभी में वो अपर्याप्तों के ही लिया स्त्यान वृद्धि के लिए। नीचे के पैराग्राफ, तीन्द्रिय, तीन्द्रिय पर्याप्त और तीन्द्रिय अपर्याप्त जीवों की प्ररूपना द्विंद्रिय, द्विंद्रिय पर्याप्त और द्विंद्रिय अपर्याप्त जीवों के समान है। विशेष इतनी कि घ्राण इंद्रिय के साथ तीन्द्रिय और तीन्द्रिय पर्याप्त जीवों के 41 प्रत्यय होते हैं और अपर्याप्तों के 39 प्रत्यय होते हैं, क्योंकि उनके औदारिक का योग और असत्यम रुषानी अनुभव वचन योग का अभाव है, अनुभव। समझ में आती है ये बात? इंद्रिय के बदले तीन इंद्रिय कहना, परंतु उनके इंद्रिय असंयम में तीन इंद्रिय असंयम गिनने
एक बड़ा
और प्राणी असंयम में छह गिनने, ख्याल में? एक एक इंद्रियों को बढ़ाएंगे और अपर्याप्तों में उनके भी औदारिक का योग और वचन योग नहीं होता है। अब तीन्द्रिय जाति नाम कर्म का स्वोदय बंध होता है। तीन्द्रिय नाम कर्म का लिखा है ना, तीन्द्रिय जाति है और शेष इंद्रिय नाम कर्म का यानी इंद्रिय जाति नाम कर्मों का परोदय बंध होता है। यानी तीन्द्रिय जीव जब एक इंद्रिय द्विंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जाति बांध रहा है तो उसको कहेंगे परोदय से बनती है। जब वो त्रिंद्रिय जीव तीन्द्रिय जाति बांध रहा है तो कहेंगे स्वोदय से बनती। चतुरिंद्रिय चतुरिंद्रय हुआ है, चतुरिंद्रिय जीवों का भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि उनके चतुरिंद्रिय जाति का स्वोदय बंध होता है और शेष इंद्रिय, वो इंद्रिय बराबर लिखना, ई के ऊपर बिंदी चाहिए, वो द्री के ऊपर आ गई, शेष इंद्रिय जातियों का बंध परोदय होता है। यहाँ चक्षु इंद्रिय का प्रवेश होने से 42 उत्तर प्रत्यय होते हैं। एक एक प्राण बढ़ गया ना अभी, इनका प्राण नहीं, वो इंद्रिय के असंयम, असंयम अपर्याप्तों के 40 प्रत्यय होते हैं, क्योंकि उनके औदारिक कायोग और असत्य मृषा वचन योग का अभाव है। जो पर्याप्तों के उसमें से दो दो कम कर देना। अब 168 पेज पर आते हैं। पंचेंद्रिय अपर्याप्तों की प्ररूपना करते हैं। यहाँ बद्यमान प्रकृतियां पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों द्वारा बांधे जाने वाली ही है, अन्य नहीं। वही 109 प्रकृतियां, क्योंकि पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहने से पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त आ गए उसमें, क्योंकि देवनारकी तो उसमें आ नहीं सकते हैं, प्रकृतियां तो वही होगी बनने वाली। यहाँ इनका उदय से बंध पूर्व में या पश्चात विच्छिन्न होता है यह विचार नहीं है, क्योंकि सतर असत बंधोदय के विच्छेद का यहाँ अभाव है। यानी कितनी प्रकृतियां उदय रूप ही नहीं है, और जो उदय रूप है उसका विच्छेद नहीं है, इसलिए उसका कंपेरिजन हम नहीं कर सकते। अब पांच ज्ञानावर्णीय, चार दर्शनावर्णीय, मिथ्यात्व, नपुसक वेद, पंचेंद्रिय जाति, तेजस्व कर्मान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु, त्रस बादर, अपर्याप्त, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग अनादेय, अयश कीर्ति, निर्माण, नीच गोत्र और पांच अंतराय, इनका स्वोदय बंध होता है क्योंकि वे ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। देखो यहाँ शरीर को नहीं लिया क्योंकि उसका विग्रह गति में उदय नहीं होता ना, इसलिए वो प्रकृतियां छोड़ दिए। निद्रा प्रचला, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, छह नौ कषाय, तिर्यगायु मनुष्यायु, तिर्यक गति, तिर्यंज गति प्रायज्ञानुपूर्वी, मनुष्य गति, मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी, इनका स्वोदय परोदय बंद होता है क्योंकि उदय के बिना भी तथा उदय के होने पर भी इनका बंध पाया जाता है। देखो निद्रा प्रचला ध्रुवबंधी है पर ध्रुवोदयी नहीं है, क्योंकि जागृत अवस्था में उसका उदय नहीं है। बाकी तो समझ में आता है ना, कषाय में तो ऐसा लेना, क्रोध का उदय तो मान माया लोभ का नहीं है, इसलिए उसको स्वोदय परोदय दोनों कहा। औदारिक शरीर कुंड संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, उपघात और प्रत्येक शरीर का स्वोदय परोदय बंद होता है क्योंकि विग्रह गति में बंद उदय नहीं है। बाद में इसका उदय तो नियम से है पर विग्रह गति में इनका उदय नहीं है, फिर भी बनती तो है, इसलिए कहा वहां पर उपरोदय और बाद में स्वोदय। यहाँ लिखा है ना, क्योंकि विग्रह गति में उदयाभाव यानी उदय का अभाव होने पर भी तथा अन्यत्र उदय के होते हुए भी इनका बंध देखा जाता है, इसलिए वो स्वोदय परोदय दोनों लिया। अब ये अपर्याप्त जीव है इसलिए स्त्यांग वृद्धि त्रय का उदय नहीं होगा यहाँ पर। स्त्रीवेद पुरुषवेद एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय जाति, क्योंकि ये पंचेंद्रिय जीव है ना, अन्य जाति का उदय नहीं है। पांच संस्थान यानी हुंडक संस्थान को छोड़कर, पांच सहनन और संप्राप्त को छोड़कर, परघात उच्छ्वास या पर्याप्त जीवों के उसका उदय नहीं होता। आतप उद्योत, दो विहाय गतियां, स्थावर सूक्ष्म पर्याप्त साधारण शरीर, सुभग सुस्वर आदेय, यश कीर्ति और उच्च गोत्र, इनका परोदय से बंध होता है, ये अपर्याप्त है, इनके इसका उदय ही नहीं है क्योंकि यहाँ इनके उदय का विरोध है। अब आते हैं 159 पेज, 69 पेज पर, 169 पर। पांच ज्ञानावरणीय वो यह लिखो बराबर, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व सोलह कषाय, भय जुगुप्सा, तिर्यगायु मनुष्यायु, औदारिक तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात, निर्माण और पांच अंतराय, इनका निरंतर बंध होता है क्योंकि यहाँ ये ध्रुवबंदी है। अब आयु ध्रुवबंदी नहीं है परंतु वो अंतर्मूर्त तक बनती है, एक समय में नहीं रुकती, इसलिए उसको निरंतर कहते हैं। और बाकी प्रकृतियां तो यहाँ हर समय बन रही है। सातावा असाता वेदनिया, सात नौ कषाय, मनुष्य गति, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, छह सहनन, मनुष्य गति प्राज्ञानपूर्वी, परघात उच्छ्वास आतप उद्योत, दो विहाय गतियां, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति और उच्च गोत्र, इनका सांतर बंध होता है क्योंकि एक समय से इनका बंद विश्राम देखा जाता है। अंतर्मूर्त बन सकती इसलिए निरंतर नहीं कहा, एक समय में विच्छेद होता इसलिए सांतर कहा। तिर्यक गति, तिर्यक गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र का सांतर निरंतर बंद होता है। वही जो हमने वहां देखा था पहले, अग्नि का एक वायु का एक में से आने वाले जीवों की अपेक्षा देखेंगे। तिर्यक गति, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र का वो बताए सांतर निरंतर। तो शंकाकार पूछते निरंतर बंध कैसे होता है? समाधान, यह ठीक नहीं, क्योंकि तेज कायिक और वायु कायिक जीवों में से पंचेंद्रिय अपर्याप्तों में उत्पन्न हुए जीवों के अंतर्मूर्त काल तक इनका निरंतर बंध पाया जाता है, यानी वो एक समय में नहीं रुक सकता। अन्य जीवों में अन्य से आए हुए का एक समय में वो दूर रुक कर मनुष्य गति का भी हो सकता है बंध। लास्ट लाइन, इन प्रकृतियों को बांधने वाले पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के, अभी प्रत्यय कितने वो पूछ रहे हैं, पांच मिथ्यात्व, बारह संयम, क्योंकि अभी इंद्रिया तो सब है ना, और पंचेंद्रिय इतना कहा है, संघीय संघ दोनों है, कहेंगे तो सही, उसका भले यूटिलाइजेशन नहीं है। बारह के बारह लिए, सोलह कषाय, सात नौ कषाय, स्त्री पुरुष वेद नहीं लिए, और दो योग, इस प्रकार 42 प्रत्यय होते हैं। अपर्याप्त जीव है पंचेंद्रियों के, औदारिक मिश्र और कारमान दो ही योग लिए। तिर्यगायु मनुष्यायु के 41 प्रत्यय होते हैं, क्योंकि उनके कारमान प्रत्यय का अभाव है, 42 में से कम कर दिया। शेष प्रत्यय प्ररूपणा सुगम है। अब कौन से गति के साथ कौन सी प्रकृतियां बनती है वो बात बता रहे हैं। तिर्यगायु, तिर्य गति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनिय, चतुरेंद्रिय जाति, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति मनुष्य गति के साथ भी बन सकती, तिर्यंच गति के साथ, इसलिए उसको छोड़ दिया। तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण शरीर, इनका तिर्य गति से संयुक्त बंध होता है। मनुष्यायु मनुष्य गति, मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी और उच्च गोत्र का मनुष्य गति से संयुक्त बंध होता है, तथा शेष प्रकृतियों का बंध तिर्यक गति व मनुष्य गति से संयुक्त होता है। जैसे पंचेंद्रिय जाति बांधना है ना, नीच गोत्र बांधना है, दोनों गतियों के साथ बन सकता है। कारमान का योग, दो ही योग होते हैं, उसमें से आयु बंध के समय कारमान को भी नहीं लेना है। अभी स्वामी कौन है वो बता रहे, पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीव स्वामी है, बंध अध्वान सुगम है, बंध विच्छेद यहाँ है नहीं। अब पांच ज्ञानावर्णीय, नौ दर्शनावर्णीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय जुगुप्सा, अब ये सब ध्रुव बंदी बता रहे, तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अग्रु लघु उपघात, निर्माण और पांच अंतराय, इनका चार प्रकार का बंध होता है। कौन सा? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, क्योंकि ये ध्रुवबंदी है। शेष प्रकृतियों का सादी व अध्रुव बंध होता है, क्योंकि वो तो पलट पलट कर बंदी मिला ना आपके उसमें, हाँ है कि नहीं है, 170 पर हम देख रहे थे। हाँ, अब नया सूत्र पढ़ेंगे, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पज्जत्त एसो। अब पंचेंद्रिय कहने से सारे चार गति के आ गए, पहले पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहा था, अब अब पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त कहने से सभी चारों गति के आ गए, तो हमको जो ये प्रत्यय वगैरह देखना है तो उसमें सबकी बात देखनी पड़ेगी। देखो सूत्र पढ़ेंगे, 170 पेज, पंचिंद्रिय पंचिंद्रिय पज्जत्त एसु, पंचनानावर्णीय, चौदंशनावर्णीय, जसकीर्ति, उच्चागोद, पंचंतरायणम, को बंधो को अबंधो, जैसे हमने ओघ में देखना चालू किया था, ये दस विगुण स्थान तक बनती है ना। पंचेंद्रिय इतने अपने मार्गण है, वो मनुष्य तो है ही बांधने वाले। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यश कीर्ति, उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इनका कौन बंधक और कौन अबंधक है? यह पृच्छा सूत्र देशामर्शक है, इसलिए इसके द्वारा सूचित अर्थों की प्ररूपना करते हैं। पेज नंबर 171 पर आए जस्ट अभी हम। तो ये जो प्रकृतियों को कौन बांधता है, कौन अबंधक है, ये पूछा था, तो उसका भी अर्थ बता रहे यहाँ पर 171 पेज पहली लाइन। वह इस प्रकार है, क्या मिथ्या दृष्टि बंधक है, क्या सासाधन सम्यक दृष्टि बंधक है, क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि बंधक है, क्या असंयत सम्यक दृष्टि बंधक है, क्या संयता संयत, क्या प्रमत्त, क्या अप्रमत्त, क्या अपूर्वकरण, क्या अनिवृत्तिकरण, क्या सूक्ष्म सांप्रायिक, क्या उपशांत कषाय, क्या क्षीण कषाय, क्या सहयोगी जिन, या क्या अयोगी भट्टारक बंधक है। इस प्रकार ये एक संयोगी भंग है। ओ बापरे। अब यहाँ द्विसंयोगादिकों के द्वारा अक्ष संचार करके 16,383 प्रश्न भंग उत्पन्न कराना चाहिए। क्या कहा?
ये द्विसंयोगी कैसे लेना इसमें? ये गुणस्थान की अपेक्षा बात है ना?
हाँ, क्या पहले दूसरे के बंधक है, क्या पहले और तीसरे बंधक है, क्या पहले और चौथे बंधक है, क्या पहले और पांचवे बंधक है, क्या पहले और छठे, हर एक के साथ लगा लो, 14 गुणस्थान है। ये कैसा निकाला इतना सब?
टू,
ये देखो, तीन अगर हो गए ए बी सी, तो क्या करते हैं, दो गुना दो गुना दो करते हैं और माइनस एक करते हैं।
ये 14 बार 2 लिखो,
अभी 14 बार 2 लिखो और आपस में गुणा करो
और माइनस वन
करो। हाँ, 28 नहीं होता, 2 को 14 बार गुणा करना है। 2 × 2 × 2 14 बार करना है। ना हमको वो 16 बार करेंगे तो संख्या मालूम है कौन सी आती है, पन्नटी। तो उसके बदले वो अगर 16 बार ऊपर लिखते हैं और नीचे 2 बार लिखेंगे तो 16 में से 2 कैंसिल हो जाएगी, है ना?
पन्नटी डिवाइडेड बाय चार
हो जाएगा, 16,384 आते हैं
माइनस वन,
और 16,384 में से एक कम कर दो तो 16,383 आते हैं। ये हमने द्विरूप वर्ग धारा में देखा था ना, उसका अर्धच्छेद कितना है, तो 16 जिसका अर्धच्छेद है उसको हमने 2 × 2 = 4 से भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। ये 16,384 वो संख्या से और कुछ आपको मालूम है क्या, इतना क्या है जो 14 बार 2 × 2 होता है, ऐसा आपको कोई मालूम है स्ट्रक्चर? नहीं
मालूम,
याद नहीं आ रहे। नंदीश्वर द्वीप वही क्या है, 163 कोड़ी जो जन्म 1,84,000 है, यानी 16,384 करोड़। 84 लाख तो उन्होंने अलग बताया, उन्होंने पूरी संख्या कितनी है, 16,384 करोड़ योजन, क्योंकि पहला जम्बू द्वीप है, फिर दो कितने बार दो गुना हुआ तो 7 द्वीप और 7 समुद्र मिलकर 14 है और उसका नंबर 15वां है, तो 15वीं संख्या 14 बार 2 हुई ना, तो 14 बार 2 तो पहला ओरिजिनल 1 लाख था तो 14 बार 2 हुआ तो 16,384 आ गए, उसको करोड़ लगा लो। देखे यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ द्विसंयोग आदि का अर्थ होता है द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुस्संयोगी, अधिक से अधिक कितने संयोगी हो गए?
ये प्रकृति के लिए,
अरे 14 गुणस्थान है तो 14 संयोगी हो जाएगा। पूछेंगे ना क्या एक से 14 तक सारे बनते हैं, ये भी एक भंग हो गया ना उसका, 14 का संयोग करके पूछा उन्होंने। पहले सिंगल सिंगल रखा, क्या पहले वाला बनता है, क्या दूसरे वाला बंधक है, कि तीसरे वाला बंधक है, फिर दो दो को पूछेंगे, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, पहला और चौथा, पहला और पांचवा, ये दो दो संयोगी, फिर तीन तीन का कॉम्बिनेशन, चार चार का कॉम्बिनेशन, सबकी टोटल इतनी हो सकती है। एक संयोगी नहीं, सिंगल नहीं, नहीं नहीं, एक गुणस्थान केवल। कौन बंधक है पूछा था, क्या पहले वाले बंधक है, क्या दूसरे वाले, क्या तीसरे वाले, सिंगल सिंगल को पूछा था, तो उसके 14 अलग अलग भंग हुए। अब द्विसंयोगी करो एक एक के, ख्याल में आई बात? एक एक के संयोगी भंग कितने, उसका भी तरीका है ना अपने को निकालने के लिए, क्या नहीं है?
एक एक,
हाँ, द्विसंयोगी कितने हो गए टोटल?
किसके, नहीं आप किसके,
द्विसंयोगी भंग कितने हो गए टोटल?
ये तो बताए ना अभी, द्विसंयोगी
अकेला, द्विसंयोगी, द्विसंयोग आदि ने द्वि, त्रि, चतुर, पंच, सप, बा, 14 संयोगी तक की सब मिलके बात है। अकेले द्विसंयोगी भंग कितने हो गए? पहले गुणस्थान के 13 हो गए, दूसरे गुणस्थान के 12 हो गए, तीसरे गुणस्थान के 14 माइनस एक का संकलन धन करो, इतने हो गए 13 से लेकर एक तक हो जाएगा ना, एक से 13 तक की टोटल, उसका अर्थ होता है 13 का, यानी 14 गुणस्थान है, उसको हम गच्छ कहेंगे, एक माइनस गच्छ का एक बार संकलन धन। बताओ क्या, थोड़ा समझो तो कही। हमारे पास 3 ही है तो क्या करते हम, द्विसंयोग, ये सिंगल संयोगी तो एक एक लिखा, 3 आ गए, अकेले ए को भैया, अकेले बी को, अकेले सी को। अब डबल डबल करना है तो ए के साथ बी लगाओ, ए के साथ सी लगाओ और बी के साथ सी लगाओ, 3 ही आ गए, पन 4 होते हैं तो ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, इसके 3, इसके बी सी और बी डी, इसके 2 और इसका 1, ये 6 हो जाएगी टोटल। जैसे हमारे पास 14 है तो पहले गुणस्थान को 13 के साथ द्विसंयोगी करो, दूसरे गुणस्थान को आगे वाले 12 के साथ द्विसंयोगी करो, 11 के, इस तरह से 13वें गुणस्थान के लिए 14वें के साथ द्विसंयोगी करो, तो 13 से लेकर 1 तक की सब टोटल होगी। तो 1+2+3+4 इसे 13 तक गिनना है, तो उसकी टोटल कितनी आ गई, तो उसका सतरी का है 13 × 14 / 1 × 2 तेरी साथी 91 द्विसंयोगी भंग आ जाएंगे। तो सिंगल संयोगी 14, द्विसंयोगी 91, अब त्रिसंयोगी इसके करते जाओ,
टोटल
हाँ देखो अभी हम आगे देखते हैं। ये सब हमने ज्ञान मार्गणा वगैरह में सीखा था,
भूल गए,
अभी भूलने का अधिकार है कि नहीं अभी?
स्वभाव का निषेध, स्वभाव का निषेध कर रहे हैं।
हाँ हाँ देखो देखो, ये हम पेज नंबर 171 पांचवी लाइन से फिर पढ़ते। अब यहाँ द्विसंयोग आदि यानी द्विसंयोग, त्रिसंयोग, चतुस्संयोग सब लेना आदि में, उसके द्वारा अक्ष संचार करके यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन करके 16,383 प्रश्न भंग उत्पन्न कराना चाहिए। क्या पूर्व में इनका बंध विच्छिन्न होता है, क्या उदय, या क्या दोनों एक साथ विच्छिन्न होते हैं? इस प्रकार यहाँ 3 भंग होते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न उठ सकते हैं वो तो पहले फिर दोबारा यहाँ बता रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे ना, ये जो प्रश्न यानी जो प्रकृतियाँ पूछी है उसके बारे में ही देखना है कि ज्ञानावरणीय का बंध पहले विच्छिन्न होता है, बाद में उदय वगैरह वगैरह। हाँ, क्या दोनों एक साथ विच्छिन्न होते हैं? इस प्रकार यहाँ तीन भंग होते हैं। क्या स्वोदय से बंध होता है, क्या परोदय से, या क्या स्वोदय परोदय से? इस प्रकार यहाँ भी तीन भंग होते हैं। भंग ने कितनी पॉसिबिलिटीज वो सब निकाल रहे हैं। क्या सांतर बंध होता है, क्या निरंतर बंध होता है, या क्या सांतर निरंतर? इस प्रकार यहाँ भी तीन ही भंग होते हैं। इनका बंध क्या मिथ्यात्व तो प्रत्यय है, क्या असंयम प्रत्यय है, क्या कषाय प्रत्यय है, या क्या योग प्रत्यय बंध है? इस प्रकार 15 मूल प्रत्यय संबंधी प्रश्न भंग होते हैं। एकांत विपरीत मूढ़ यानी इसको विनय संदेह और अज्ञान रूप 5 मिथ्यात्व, चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा स्पर्श मन, ये तो 6 इंद्रिय संबंधी संयम हुआ। पृथ्वी का एक, अप का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक, इनके निमित्त से होने वाले 12 असंयम, अभी उसके कॉम्बिनेशन तो और अलग अलग होंगे। 16 कषाय, 9 कषाय और 15 योग प्रत्ययों को स्थापित कर 1441 कोड़ा कोड़ी 15,18,807 करोड़ 58,55,871 उत्तर प्रत्यय निमित्तक प्रश्न भंग उत्पन्न कराना चाहिए। प्रश्नों के भंग इतने हो गए सब आते हैं। हाँ, सब आएंगे। क्या पहले बंदे विच्छिन्न होता है, क्या निरंतर है, क्या सांतर है, वो सब आएंगे, सभी प्रश्न यहाँ आएंगे। पर उसके अभी भंग निकाल रहे हैं कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, क्योंकि उसको एक जो भंग होते हैं उसको दूसरे भंगों से गुणा करते चले जाएंगे। तो पूछते क्या यह नरक गति से संयुक्त बनते हैं, क्या तिर्यक गति से संयुक्त बनते हैं, क्या मनुष्य गति से संयुक्त बनते हैं, या क्या देव गति से संयुक्त बनते हैं? इस प्रकार यहाँ 15 प्रश्न भंग उत्पन्न कराना चाहिए।
किसे हो गए?
अभी 4 के हैं ना,
4
दो चार, उसके कॉम्बिनेशन यानी द्विसंयोगी त्रिसंयोगी। देखो 4 बार 2 लिखो, आपस में गुणा करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 होते हैं, उसमें से -1 तो ये 15 भंग हो जाते हैं। बंध अध्वान का भंग प्रमाण सुगम है। बंध अध्वान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक? क्या विवक्षित गुणस्थान के आदि में, मध्य में या अंत में बंध विच्छेद होता है? इस प्रकार एक एक गुणस्थान में 3-3 भंग उत्पन्न कराना चाहिए। बंध विच्छेद के प्रश्न विषयक सर्व भंगों का योग 42 होता है। क्या सादि, क्या अनादि, क्या ध्रुव और क्या अध्रुव बंध होता है? इस प्रकार यहाँ 15 प्रश्न भंग उत्पन्न करना चाहिए। क्या सादी और अनादि है, क्या सादी और ध्रुव है, क्या सादी और अध्रुव है, इस तरह से वो कॉम्बिनेशन लगाते चले जाओ। हर एक में उन्होंने कॉम्बिनेशन लिए, यहाँ भंगों की पहली बार प्ररूपना की है। पहले केवल हमें 23 प्रश्न पूछे गए थे, अब यहाँ प्रश्नों में भंग बता रहे हैं। क्योंकि जैसे गति 4 गतियों से संयुक्त होता है, तो क्या अकेले नरक गति के संयुक्त होता है, क्या एक एक गति को अलग बताएं, फिर 2-2 गति को एक साथ लेना, 3-3 गति को, 4 गति को एक साथ लेंगे तो उसके वो भंग बनते हैं। अब उसका उत्तर बता रहे हैं। मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जहाँ व सुम साम्प्राय शुद्धि संज देसु व समा खवा बंधा सुम साम्प्राय शुद्धि संज धाये चरिम समयम गंतुन बंधो उच्छिज्यति एदे बंधा अवशेषा बंधा। मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयतों में उपशामक व क्षपक तक बंधक है। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत काल के अंतिम समय को जाकर बंध विच्छिन्न होता है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, वो पहले गुणस्थान की प्ररूपणा में सब आया था, ये है ना, पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अंतराय का। पूर्व में बंध और पश्चात उदय विच्छिन्न होता है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में बंध के नष्ट हो जाने पर, इसका उदय कहाँ तक है, बारहवें तक है, क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में उनका उदय विच्छेद पाया जाता है। अब यश कीर्ति और उच्च गोत्र का, वो भी यहीं पर बंध विच्छित्ति होती है। पूर्व में बंध और पश्चात उदय विच्छिन्न होता है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में बंध के नष्ट हो जाने पर अयोग केवली के अंतिम समय में इनका उदय विच्छेद पाया जाता है। अब वो सोदय की परोदय की बात करेंगे कि पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पांच अंतराय का स्वोदय बंद होता है, क्योंकि जब तक बंद है तब तक उसका उदय तो हर समय चल रहा है। यश कीर्ति का मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि तक स्वोदय परोदय से बंद होता है, क्योंकि उसकी उदय विच्छित्ति है चौथे में अयश की, क्योंकि इन गुणस्थानों में अयश कीर्ति का भी उदय देखा जाता है। आगे ऊपर शब्द डालो, उवरी लिखा है ना प्राकृत में, उवरी स्वोदय ना, ऊपर इसका स्वोदय से ही बंद होता है, क्योंकि वहां अयश कीर्ति के उदय का अभाव है, चौथे में उदय विच्छित्ति हो गई। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक उच्च गोत्र का स्वोदय परोदय से बंद होता है, क्योंकि इन गुणस्थानों में नीच गोत्र का भी उदय देखा जाता है। तिर्यंचों को भी है ना पांचवा गुणस्थान, वहां तक नीच गोत्र का भी उदय देखा जाता है। आगे के गुणस्थानों में उसका स्वोदय से बंद होता है, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृति कौन, नीच गोत्र के उदय का अभाव है। ये हाँ, चौथे के बाद, हाँ खाली यश कीर्ति का ही उदय और वो बंद रही है। पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अंतराय का निरंतर बंद होता है, क्योंकि सब गुणस्थानों में एक समय से इनके बंद विच्छेद का अभाव है। वो तो ध्रुव बंदी भी है ना, ऐसे भी यश कीर्ति का शांत निरंतर बंद होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत तक इनमें प्रतिपक्ष प्रकृति का बंध देखे जाने से शांतर बंद होता है, और इससे ऊपर प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध का अभाव होने से उसका निरंतर बंद होता है। उच्च गोत्र का मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि गुणस्थानों में सांतर निरंतर बंद होता है, नीचे भी निरंतर लिखा है, क्योंकि यहाँ असंख्यात वर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्यों में तथा संख्यात वर्षायुष्क तीन शुभलेशाओं में उसका निरंतर बंध देखा जाता है, क्योंकि असंख्यात वर्षायुष्क वाले वो देवगति के साथ उच्च गोत्र को ही बांध रहे हैं, और शुभलेशा वाले मनुष्य तिर्यंच भी उच्च गोत्र को ही बांधते रहते हैं। भूभूमि वाले तीन इंच मनुष्यों में वो उच्च गोत्र बांधते ना, देवगति और उच्च गोत्र बांधते हैं, और संख्यात वर्षायुष्क भी तीन शुभलेशा वाले लिए, यानी कर्मभूमि के शुभलेशा वाले लिए, वो भी देवगति का ही बंध करते हैं, उच्च गोत्र बांधते हैं।
मनुष्य गति में जो नीच गोत्र का उदय वाला जीव आता है उसको पांचवा गुणस्थान ही प्राप्त होगा ना।
हाँ, पांचवा गुणस्थान तक है वो, उपरिम गुणस्थानों में निरंतर बंद होता है, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध का अभाव है। प्रत्ययों की प्ररूपणा मूलोग के समान है, गति संयुक्तादि उपरिम पृच्छाओं के विषय में जानकर कहना चाहिए, कौन से गति के साथ, जैसे उच्च गोत्र है वो तो तिरंज गति और नर गति के साथ नहीं बंधेगी, यश कीर्ति है वो नर गति के साथ नहीं बंधेगी, यश कीर्ति का बंध होगा इस तरह से। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देख बोलो।
नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यनम, नमो उद्गणम।